राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सबको दिवाली की बधाई हो। बड़े आनंद से दिवाली मनाया, प्रसाद खाया, मिठाई, आनंद हुआ, बहुत अच्छा। तो श्रीमान मुकुंद प्रभु जी और उनकी धर्मपत्नी अंजना और सहदेवी बेटी और सारा परिवार आज कार्तिक के महीने में अपने घर में आप सब लोगों को भगवान की कथा और कीर्तन और दामोदर भगवान को दीप अर्पण करने का अवसर दिया, हम इनका धन्यवाद करते हैं। ये महीना कार्तिक का है, दामोदर महीना इसको कहते हैं, और इस महीने में भगवान श्री राधा दामोदर की केवल दीप अर्पण करने से, पूजा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपनी प्रेम भक्ति दे देते हैं। तो आप भाग्यशाली हो, भारत से बहुत दूर, हजारों कोस दूर, भारत की संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस आइलैंड कर के ऊपर भी प्रतिवर्ष दामोदर मास में बहुत बड़ा उत्सव होता है घर घर में। आइए हम भागवत के दिवाली का दिन, जैसे कल का दिवाली का दिन था, वही दिन है दिवाली का जिस दिन माँ यशोदा ने भगवान छोटे 3 साल के बालक श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा था। रस्सी को दाम कहते हैं और बांधा था पेट के ऊपर, इसलिए उसको उदर बोलते हैं। तो भगवान का नाम दामोदर हो गया। तो ये लीला दिवाली के दिन हुई थी। तो दिवाली के दिन माँ के प्रेम से भगवान श्री कृष्ण बंध गए, रस्सी से तो नहीं बंधे लेकिन यशोदा के प्रेम से बंध गए। क्यों भगवान ने यह लीला करने का निर्णय ले लिया, क्यों भगवान ने यह लीला किया? क्योंकि इससे पहले एक दिन माँ यशोदा दूध पिला रही थी भगवान श्री कृष्ण को, तो दूध पीते हुए भगवान ने मुंह खोला यानिंग के लिए, जमाई लिया, और यशोदा ने मुख के अंदर देखा पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब सब लोक देखे, सूर्य, चंद्रमा, रुद्र, इंद्र, वरुण, सब देवता देखे। माँ आंखें झटक के बोली, क्या हो गया बच्चे को? मेरी आंख खराब होगी कि बच्चे को भूत लगा, पता नहीं क्या हुआ। ऐसे किया तब तक भगवान ने मुख बंद कर दिया। अभी कुछ दिन गुजरे थे, 2.5 साल, 3 साल, 3 साल से थोड़ा छोटा कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग में गोकुल में जमुना के किनारे खेलने गया और वहां बैठ के मिट्टी खाया, मिट्टी भी ऐसे मुट्ठी भर के खाया। तो सब ग्वाल बालों ने भागते हुए आकर यशोदा मैया को कहा, मैया मैया, कन्हैया मिट्टी खा रहा है। मैया ने कहा, पहले तो सब ये कहते हैं कि हमारे घर से माखन चोरी करके खाता है, आज ये समाचार आया कि मिट्टी खा रहा है। माखन खाता है किसी के घर में चोरी करके कोई बात नहीं, माखन खाएगा तो जरा अच्छा खासा उसका स्वस्थ अच्छा होगा, शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन मिट्टी खाएगा तो बीमार हो जाएगा। मां को बहुत बड़ा पीड़ा हुई कि मिट्टी खाएगी तो, मिट्टी खाया है तो बच्चा बीमार हो जाएगा। मां भागती हुई गई सीधी जमुना के किनारे, कन्हैया तुमने मिट्टी खाई? मुंह बंद है, मुंह में मिट्टी पड़ी है। बोलते नहीं नहीं। बोला सब ग्वाल बाल बोलते हैं मिट्टी खाई, ओ दाऊदी बलराम बोलता है मिट्टी खाई। मुंह खोलो। मिट्टी को अंदर डाला और मुंह खोला। जैसे मुंह खोला यशोदा अंदर देखती है फिर एक बार पूरा ब्रह्मांड। जमुना बह रही है, यशोदा बैठी है उसकी गोद में, कन्हैया बैठा वो भी देख रही। मैया कहती, हो क्या गया? ये तो एक बार पहले, आज फिर ये दिख रहा है, पूरी दुनिया इसके मुंह में है। मां को बड़ी चिंता हुई, मां परेशान हो गई, तो वहां से चल के थोड़ी आगे गई शंकर जी का एक स्थान है, उसको कहते चिंताहरण महादेव, वहां जाके बैठी जो जमुना जी के तट पे, तो मुख से भगवान की योग माया ने, लीला शक्ति ने वो दृश्य दूर कर दिया। अब दो बातें थी, एक बात भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मां मेरी दो तीन बार मेरे मुंह में ब्रह्मांड देख चुकी है और ये पता सबको लग जाएगा तो समझेंगे मैं भगवान हूं, ईश्वर हूं, हाँ विश्व रूप दिखाता हूं, तो फिर तो ये मेरे को कमरे में बंद करके एक छोटी सी अलमारी में रखेंगे और फिर किसी वक्त आरती, किसी वक्त दीप, किसी वक्त अगरबत्ती करेंगे, मेरे को खेलने तो जाने देंगे नहीं, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अब क्या करना चाहिए? अब ऐसे करना चाहिए कि मां को लगे कि मैं उससे डरता हूं और मैं उसका बच्चा हूं और वो जो खिलाएगी तो खाऊंगा, नहीं तो भूखा मर जाऊंगा। ऐसे जब मां को समझ में आ जाएगा तो फिर मेरे को घर में बांधेगी नहीं, मैं ग्वाल वालों के साथ खेल सकूंगा, नहीं तो पूजा के जाले में बना। आप क्या करते हैं घर में, ठाकुर जी रखे हैं ना, आप काम पे जाते हैं बेचारे को बंद करके चले जाते हैं। तो कन्हैया का क्या होता, कन्हैया बड़ा चिंता में हो गया। एक तो ये बात थी कन्हैया के मन में, और मां यशोदा का नाम क्या है, गोपी, उसको गोपी बोलते, और वृंदावन गोकुल में सब वो बड़ी बड़ी स्त्रियों को गोपियां बोलते और छोटी भी गोपियां हैं। गोपी क्यों बोलते हैं, जो कृष्ण को छुपा के रखे। गोपी गोपनीय शब्द है, गोपनीय संस्कृत, गोपनीय मतलब छुपा के रखना। तो कृष्ण जब मथुरा से छुपने के लिए गोकुल में आया तो फिर बार बार मुंह खोल के ब्रह्मांड क्यों दिखा रहा है? तो छुपना है तो छोटा बन के छुप के बैठना चाहिए ना, या अपने आप को बड़ा दिखाना है तब पता लगेगा कंस को के यही भगवान है, फिर यह मुसीबत आ जाएगी ना। जब भगवान से छुपने के लिए ही गोकुल में आया है तो बार बार ये ब्रह्मांड क्यों दिखा रहा? तो मां ने कहा इसको मैं ऐसे बांध के दिखाऊंगी तो कंस बोलेगा ये तो कोई छोटा बच्चा है, वो गोपी नहीं बांध दिया, ये कौन सा भगवान होगा। तो बच्चे का गोपनीय करके उसको छुपा रही यशोदा, उसको छुपाना चाहती, ये यशोदा का भाव है और कन्हैया का भाव है कि मैया मुझे भगवान न समझ रही। तो ये दोनों के कारण ये लीला दिवाली के दिन हुई। क्यों दिवाली के दिन हुई? दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा हुआ करती थी गोकुल में। इंद्र बरसात बरसाता है और इसलिए सारे जो ब्रजवासी हैं उनकी गाय हैं, गाय के लिए घास चाहिए और अपनी जमीनें हैं तो उनके लिए बरसात चाहिए, तो बरसात इंद्र करता है। इसलिए इंद्र का बहुत बड़ा 7 दिन यज्ञ चलता था, 7 दिन बड़ा उत्सव चलता था। तो उस दिन सारे लोग उसके काम में लगे हुए थे। तो मां ने कहा कि गोपाल के लिए मैं स्वयं दही बनाऊं, दही का मंथन कर लेती हूं, दूध में स्वयं मंथन कर लूंगी। एक तो ये बात है कि सब बाकी काम वाली जितनी मेरे घर में है, हजारों सेवकाएं, वो तो यज्ञ की तैयारी कर रही है। दूसरा, रोज गोपी कोई न कोई आके कहती है हमारे घर में माखन चोरी करके खाता है। अब हो सकता है हमारा मक्खन इतना अच्छा न हो, ये जो हमारे घर में काम करने वाली बनाती है इसमें टेस्ट न हो, तो मैं स्वयं बना लेती हूं। तो मां ने बड़ा मक्खन बनाने का संकल्प कर लिया। रात को दूध का जमाया, 10-12 किलो दूध एक गाय देती थी, पद्मगंधा गाय, उसका जमा के रखा। सुबह सवेल सुंदर उठ के यशोदा मैया सुंदर रेशमी कपड़े पहन के पूजा, जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए मक्खन निकालना भी पूजा है, और कृष्ण का गीत गाती हुई मंथन कर रही थी। तो गोपाल उठ के आ गए, मां गा रही है गोपाल के लिए, और गोपाल उठ के आए। गोपाल ने कहा मैया भूख लगी है, दूध पिलाओ। मैया ने मंथन को बंद करके गोपाल को दूध पिलाया। गोपाल दूध पी रहा था, मैया उसको प्रेम से देख रही थी। अचानक दूसरे चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ दूध उबलने लगा। मां ने देखा वो दूध तो उबल रहा है, वो दूध तो गिर जाएगा, ये तो मेरे स्तन का दूध है, बाद में पिला दूंगी, अपना दूध है, अपना बच्चा है, बाद में दे दूंगी, लेकिन वो दूध गिर गया तो खराब हो जाएगा। मां ने कृष्ण को नीचे रखा, ऐसे उतार के नीचे रख दिया। मां भागती हुई गई दूध उतारने। कृष्ण ने कहा मेरी मां को ये 2 किलो दूध की चिंता है, मैं भूखा हूं, मेरे को नीचे उतार के गई, मैं खीर सागर छोड़ के आया, भगवान खीर सागर में रहते हैं, खीर सागर में छोड़ के आया, यहां 2 किलो खीर के लिए मेरे को छोड़ के चली गई, ये मैया कोई मेरा वैल्यू भी नहीं है इधर। अब दिखाता हूं इसको कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, अब दिखाता हूं। उठा के पत्थर और मटके को दे मारा, नीचे जहां भरा हुआ मटका था दही सारा बह गया, दही को बहता हुआ देखा, ताली बजाई, मजा आ गया, अब मैया को आएगा मजा। ये मटका कितना पुराना है, भाई यशोदा की सास के जमाने का है, मिट्टी का मटका है ना, उसमें घी इतना लगता है, वो पुराना मटका रखते हैं, नया मटके में बहुत ज्यादा घी खाएगा। एक जगह इलेक्शन हो रही थी तो एक पार्टी के लोग पहले गवर्नमेंट कर चुके थे, एक नया कैंडिडेट खड़ा था, तो नए ने कहा देखो ये सब लोग पुराने हैं, ये बेईमान हैं, बहुत खाया है इन्होंने, इनको वोट मत दो, मेरे को दो। पुराना आया, उसने कहा देखो बात सुनो, हम पुराने हैं, हमने खाया ठीक है, लेकिन हमारा पेट तो भरा हुआ है ना, अभी तो नहीं खाएंगे ना, कम से कम ये नया है, ये नया है, ये अभी से शुरू करेगा। तो ये पुराना जो मटका है अभी तो घी नहीं खाएगा ना, कम से कम पुराना खाया हुआ है ना, अब नया मटका लगाएंगे तो घी खा जाएगा। इस घी का, इस मटके का बहुत बड़ा वैल्यू था। मैं उस दिन किसके घर, परशुराम के घर एक कथा बताई थी कि छोटे से मटके के टूटने के ऊपर यशोदा ने रस्सी भी, कौन सी जिसमें से गाय के बछड़े बांधते हैं, उस रस्सी से कन्हैया को और पत्थर के उखल में बांध दिया। दया भी नहीं आई यशोदा को कि कितना कोमल है कृष्ण। एक तपस्विनी थी, तपस्या कर रही थी, कृष्ण अर्जुन वहां पहुंच गए चलते हुए, और पानी की जरूरत थी, दूर से देखा अरे अर्जुन जरा पेड़ के ऊपर चढ़ के देखो कहीं धुआं है, कहीं घर है, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अर्जुन देखा आगो कहीं धुआं आ रहा है दूर, कोई एक कुटिया लग रही है, उधर गए तो ये स्त्री देखी, तेजस्वी माँ, तपस्या, लाल 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 ललाट लगा हुआ है। कृष्ण और अर्जुन ने जाके प्रणाम किया, मां ने जलपान कराया, फल फूल दिया। तपस्विनी बड़ी चमक रही थी, लेकिन सामने तीन तलवारें चमक रही थी। ये तो देख के आश्चर्य लगा, अर्जुन ने कहा भगवान ये तो तपस्या यहां कर रही है, ये इतनी तलवारें काय के लिए रखी है, और साधु तलवार को क्या करेगा। तो कृष्ण ने कहा पूछो, अर्जुन कहता मैया ये तलवारें क्यों रखी है। अब मैया का तेवर बदला और क्रोध में कहती है पहली तलवार यशोदा को गला काटूंगी। कन्हैया क्या बोल रही है ये मां, क्यों बोला एक पुराना सास के जमाने का मटका क्या टूटा था, छोटे से नीलकमल बच्चे को रस्सी में बांध दिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मां दूसरी तलवार, बोला ये अर्जुन के लिए है। और अर्जुन वहीं सामने बैठा थर थर कांप रहा है। कृष्ण ने पूछा भाई अर्जुन के लिए क्यों, बोला युद्ध में हार गया होता तो क्या फर्क पड़ता, आदमी मर भी जाते हैं ना, वो घोड़े लेके और हमारे ठाकुर जी को बिठाया कृष्ण को कि घोड़े चलाओ और घोड़ों का मालिश करो और घोड़ों को पानी पिलाओ, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगी। अब अर्जुन तीसरा प्रश्न तो पूछ नहीं सकता, हो तो जरा डर रहा है। कृष्ण पूछा मां तीसरी, बोला ये द्रौपदी का गला काटना है। बोला क्यों, बोला क्या फर्क पड़ता नंगी हो जाती तो, मर ही जाते हैं वैसे भी, क्या फर्क पड़ता है, वो भगवान को साड़ी करके अपने ऊपर लपेट दिया, इसको तो कभी नहीं छोड़ूंगा। अब कृष्ण ने उनकी तरफ देख के कहा मैया यशोदा ने तो प्रेम के कारण कृष्ण को बांधा था, मां बहुत स्नेह करती थी कृष्ण से, इसलिए नहीं बांधा था कि उसको कोई दंड देना था, पनिशमेंट देनी थी, इसलिए बांधा था कि सवेल का टाइम था, मॉर्निंग का नाश्ता नहीं किया था, डर के मारे कहीं चला गया जंगल के अंदर तो भूखा मर जाएगा, प्रेम से बांधा था। अच्छा आपको कैसे मालूम, बोला मुझे मालूम, और मां ने पूछा कैसे आपको बोला। तब अर्जुन ने कहा यही कृष्ण है, यही कृष्ण, जब कहा तो मां ने उसको प्रणाम किया, और कृष्ण ने कहा कि पार्थ का रथ भी मैंने पार्थ से प्रेम के कारण चलाया था, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन को रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, मैं भगवान हूं ये भूल गए, अर्जुन का रथ हांक लिया। मां वो तो प्रेम के कारण मैं अर्जुन का रथ हांका था। अच्छा द्रौपदी, बोला वो तो मेरी बहुत महान भक्तन है, मेरी सखी है, उसने मुझे पुकारा, मेरी उसको रक्षा करना था। अब मां तो समझ गई ये कृष्ण दर्शन हो गया, इसी की तो पूजा कर रही, उसको प्रणाम किया, बोला मेरा जन्म तो सफल हो गया, अब इनको मारूंगी नहीं लेकिन शराब पक्का सा इनको दे देती हूं। यशोदा 100 साल तक कृष्ण का मुंह नहीं देखेगी। तो वृंदावन से 11 साल का कृष्ण चला गया, 100 साल के बाद आया, बीच में एक बार सिर्फ कुरुक्षेत्र में मिले थे, जुदाई रहेगी। अर्जुन, अर्जुन तेरे हाथ में गांडीव तो रहेगा लेकिन एक समय आएगा तुम्हारे को चोर उचक के तुम्हारे हाथों से तुम्हारी चीजें लूट के चले जाएंगे। और अर्जुन को उस वक्त याद आया जब हस्तमायापुर से भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए और भगवान की जो 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 रानियां थी द्वारका से उनको ला रहा था रास्ते में, कुछ कुछ चोरों ने अर्जुन को लूट लिया, वही गांडी वही अर्जुन, लेकिन उस वक्त अर्जुन हार गया। अर्जुन को याद आया मुझे उस दिन भगवान के सामने यह संकेत मिला था कि एक दिन ऐसा आएगा। और द्रौपदी अपने आप को समझती है कि 5 पांडव प्रेम करते हैं और अर्जुन से अधिक प्रेम करती है, एक समय आएगा 5वें इसको छोड़ के चले जाएंगे। और अंतिम समय में ऐसे ही हुआ, जब जो पांडव जा रहे थे स्वर्ग आरोहण करने तो द्रौपदी पीछे रह गई कहीं रास्ते में। तो ये प्रेम की कथा है, लेकिन ये दूसरा इसका, कुछ भक्तों का ऐसे भाव होता है कि भगवान से ऐसी सेवा क्यों लेते हैं। तो मटका क्या फूटा, मैया ने उसको ढूंढा, बच्चा वहां मिला नहीं, कन्हैया कहां चला गया। मैया ने देखा मटके के पास में गिरे हुए दही के ऊपर कृष्ण के चरणों के निशान, दूसरे कमरे में कौवे उड़ रहे थे, क्रोज और बंदर, अरे यही होगा, ये तो बंदर का मित्र है, मरकट, मरकट बंदर को बोलते हैं, बंदर का मित्र है। ये बंदरों को क्यों मक्खन खिला रहा है घर का, भगवान कहते हैं मेरे पुराने साथी, मेरे बहुत पुराने साथी, ये रामचंद्र के साथ गए थे रावण से लड़ने के लिए, तब तो कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला था, अब मक्खन तो थोड़ा दे देना चाहिए, बड़े प्रेम से मक्खन खिला रहा है। मैया बोलती है, और मैया को देखा हाथ में लाठी है, मैया वहां से कन्हैया भागा, कन्हैया भागा, मैया पीछे भागी, मैया ने पकड़ लिया कन्हैया को और डांट के बोला क्यों तुमने मटका फोड़ा, क्यों तुम मक्खन घर का चोरी करके बांट रहे हो, अब तुम्हारे को बांधूंगी छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया ने कहा ये लाठी फेंको, मेरे को डर लग रहा है लाठी से, आंखों से आंसू बहाता हुआ रो रहा है। और मैया ने देखा ये तो डर रहा है लाठी से, लाठी से डर गया है, अरे मेरे बच्चे को डराना तो नहीं है ये, तो मैं थोड़ा सा ऐसे धमका रही हूं इसको ताकि घर में उधम न मचाए। मैया ने एकदम लाठी फेंक दी, लाठी फेंक के मैया बोलते ठीक आज तुम्हारे को तुम्हारे साथियों के साथ खेलने नहीं जाने दूंगी, तेरे को इस उखल के साथ बांध के रखती हूं, उखल के ऊपर चढ़ता है ना, आज उखल के साथ बांधूंगी। उखल ने कहा इसको बांधो, तेरा बेटा है, मेरे को क्यों बांध रही हो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा तेरे घर में। मां बोलती चोर का साथी भी चोरी, चोर का साथ भी चोर, इसको ऊपर से मक्खन उतारने में तुमने मदद की ना, तुम्हारे ऊपर चढ़ा था ना, इसलिए तुम्हारे को भी बांधना पड़ेगा। मैया कन्हैया को बांध के चली गई अपना काम करने, और गोपियां थी वो चली गई अपना काम करने, ग्वाल बाल खेल रहे हैं, कन्हैया ने देखा ये सब लोग मुझे बांध के चले गए, अब क्या करना चाहिए। बंधे हुए कन्हैया ने अपने दो मित्रों को देखा सामने, दो मित्रों के नाम वाले दो पेड़ देखे अर्जुन, कन्हैया ने उखल को टेढ़ा किया, उखल को घसीटता दोनों पेड़ों के बीच से गुजरा, थोड़ा सा उखल को खींचा दोनों पेड़ नीचे गिरे, दोनों पेड़ों के अंदर से दो देवता निकले, कुबेर आत्मजो मूर्ति बदवत, वो दोनों जड़वत पेड़ की तरह बने थे, उनको कुछ पता नहीं था, लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की कि बंधे हुए भगवान ने बंधे हुए पेड़ों का उद्धार कर दिया, मोचितो भक्ति बाजो कृतोच, उनका उद्धार किया, दोनों ने प्रार्थना की, बोला आपको खोले कन्हैया, बोला मूर्खा जाओ यहाँ से, मैं बंधे हुए तुम्हारे को खोला है, तुम मेरे को कहाँ से खोलोगे, तुमसे खुलने वाला मैं नहीं हूँ, तुम्हारे से खुलने वाला मैं नहीं हूँ, तुम जाओ जल्दी करो परिक्रमा करो जाओ। दोनों ने परिक्रमा की, तुम्हारे को भक्ति है, तुम जाओ यहाँ से। वो चले गए, आवाज नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा गौशाला से भागते हुए आए और कन्हैया को देखा, दो पेड़ों के बीच में बंधा हुआ पड़ा है, भागते हुए एकदम खोला कन्हैया को, खोल के गोद में ले लिया। किसने पेड़ गिराए? वो बच्चे खड़े थे यहाँ दो, बोला इसने गिराए। नंद बाबा बोलते इतना छोटा बच्चा इतने बड़े पेड़ गिराएगा, कोई राक्षस आया होगा। किसने बांधा? बोला यशोदा मैया ने बांधा। पापा ने बोला माँ ऐसे कैसे बांध के चली गई, दो पेड़ गिरे, कुछ हो गया होता तो ठीक है। मैया ने बांधा, मैया से बात नहीं करेंगे, चलो गौशाला में दूध पियो, उधर ही सो जाओ। मिश्री दे दी बाबा ने बाग मुंह में, मिश्री दे के गाय से सीधा दूध डायरेक्ट कन्हैया के मुंह में डाला, दूध पिया कन्हैया मौज में बैठा है। तब तो घर से समाचार आया, माँ यशोदा को पता लगा कि दो पेड़ गिरे हैं, बीच में कन्हैया बंधा हुआ था, नंद बाबा ने खोल लिया। यशोदा माँ तो मूर्छित हो गई, अरे कहीं मैं क्या किया, बांध के छोड़ के आ गई बच्चे को, दो पेड़ गिर गए, उसको लग गए हो तो क्या होता। माँ मूर्छित हो गई, ये समाचार आया नंद बाबा के, वो यशोदा यशोदा घर में मूर्छित हो गई। अब तो कन्हैया एकदम नंद बाबा के गोद से कूद के भागा घर, जाके मैया 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 ऐसे करके हिलाया। मैया के आंसुओं से आंसू बह रहे थे, मैया ने कन्हैया को गोद में ले लिया, दूध पिलाया। कन्हैया बोलता सुबह मेरे आंसू, सुबह मेरे को आपने रुलाया आंखें, अभी शाम को आपको रोना पड़ा। इस दुनिया में जो करता है वो भरता है। सुबह मैं रो रहा था, अब शाम को तुम रो रहे। तब तो सब घर वाले इकट्ठे हो गए। ये लीला दिवाली के दिन हुई थी। दिवाली के दूसरे दिन क्या था, ये कन्हैया 3 साल का था, अब कन्हैया 7 साल का हो गया। कहाँ रह रहे हैं? वृंदावन में रह रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं। कन्हैया गैया चराने जाता है, अभी बड़ा हो गया, 5 साल तक तो बछड़े चराता है, वत्सपाल है। 5 साल से बड़ा हो गया तो नाम गौपाल हो गया, अब गाय चराने जाता है। एक दिन गाय चरा के वापस घर में आया तो बहुत बड़ा उत्सव की तैयारी, इतना सारा सामान घर में पड़ा है, घी है, चावल है, दही है, दूध है, चीनी है। कन्हैया ने जाके नंद बाबा को कहा, बाबा बाबा इतना सारा ये घर में क्या हो रहा है, क्या उत्सव होने वाला है? तो नंद बाबा ने कहा, बच्चे को क्या बताऊं, क्या समझेगा कि यज्ञ हो रहा है। तो चुप रहे नंद बाबा। तो कृष्ण ने कहा, देखिए साधु लोग कोई चीज अपने हृदय में छुपा के नहीं रखते हैं, सबको बता देते हैं, और आप तो साधु पुरुष हो ही, और फिर अपने बेटे से तो कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, उसको तो ठीक तरह पता होना चाहिए घर में क्या हो रहा है। नंद बाबा ने कहा, बेटा ये इंद्र का यज्ञ करने जा रहे हैं ये हम। तो कृष्ण ने पूछा कि यह वेदों में लिखा हुआ है कि आपकी कोई घर की परंपरा है? तो नंद बाबा ने कहा, वेदों का तो मुझे पता नहीं, ये तो हमारी परंपरा है। ओह, कृष्ण ने कहा, ये परंपराओं ने लोगों को बहुत परेशान किया। परंपरा कैसे होती है पता है? बेटे की शादी, तो बेटे की शादी की मां घर में खड़ी है, बेटा अपनी पत्नी को बहू को साथ घर में लाता है, तब आपके यहां ऐसे होता है कि जब बहू घर में पहले आती है तो लाल पानी रखते हैं, उसके अंदर उसके पांव रखते हैं, और वो पांव घर के अंदर लाल आने चाहिए कि लक्ष्मी के पांव है, ऐसे मानते हैं। यहां करते हैं मॉरिशस में लक्ष्मी के पांव। तो बहू के लक्ष्मी के पांव की तैयारी के लिए बहू रास्ते में खड़ी थी, बहू देख तो रही थी घूंघट में क्या कर रही है सास। तो सास को वो बात तो भूल गई, कुछ काम करती थी, भागती हुई गई कहीं से, एक बहुत बड़ा टोकरा लिया, टोकरा समझते हैं ना, टोकरी जिसमें सामान उठा के आते हैं आप छबी, वो एक बिल्ली थी, उस बिल्ली के ऊपर ढक दिया, बिल्ली पे टोकरा ढक दिया। फिर जल्दी जल्दी आई, लाल पानी रखा और बहू ने पांव अंदर रखा, बहू के लाल लाल पांव के निशान घर में आए। पहले बहन पूछती थी भाई से, सब शादी करके आता था, भैया भैया कहाँ गए थे, क्या लाए हो साथ? तो वो भाई बोलता था, लक्ष्मी लाया हूं। तो ये पुराने जमाने की भावनाएं होती थी शादी में। तो अब लड़की की शादी हो गई, ये आया बेटा, इसको तो दो तीन साल में बच्चा हुआ, बच्चा स्कूल जाने जितना हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, 20 साल का हुआ, बच्चे की शादी हुई, बच्चे की शादी हुई, बच्चे की बहू बाहर से आ रही है, और ये जो सास अब बहुत थी वो पानी लेके नहीं आ रही, अंदर बच्चे नहीं आ रहे, क्या हो गया? आखिर एक घंटे के बाद 15 मिनट हुए, 20 मिनट, क्या कर रही हो? बोला बिल्ली ढूंढ रही हूं। अरे बिल्ली को क्या करोगी? बोला मैं जब घर में आई थी मेरी सास ने बिल्ली को टोकरे के नीचे ढका। अब ये घर में आएगी तो बिल्ली चाहिए ना, ऐसी कैसे घर में आएगी? बिल्ली को टोकरे के नीचे ढकना पड़ेगा ना, ये तो हमारी परंपरा। वो सास अभी जिंदा थी, घर में बैठी थी, उसने बोला देर क्यों कर रहे हो, बहू को बुलाओ ना। बोला सास बिल्ली ढूंढ रही। बोला क्या करोगी? बोला टोकरे के नीचे ढकूंगी। बोला क्यों? बोला आपने ढकी थी। बोला मिठाई अंदर पड़ी थी, बिल्ली खा जाती। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे टोकरा रखा था, तुमने कोई परंपरा बना ली इसको? इसको परंपरा बोलते हैं। ऐसी कोई बात हो जाती है, फिर वो रास्ते में जाते हुए पेड़ देखते हैं, उसको ऐसे करते हुए जाते हैं। अब क्या करेंगे ऐसे करने से? पेड़ को हाथ काला होगा, मुंह काला होगा, वो तो कुछ नहीं होगा। कुछ भी परंपरा ऐसी है। लोग तो इतने मूर्ख हैं। बहुत पुरानी बात है, मैं पाकिस्तान में था, एक न्यूज़पेपर में आया, क्या जरूरत है डाका डालने की, क्यों चोर बने, और नीचे लिखा था अच्छा है, तो उधर का देश का था, तो अच्छा है कोई फकीर बने, ये साधु बने, मुस्लिम साधु बने, तो नीचे लिखा था क्या था लिखा, बोला हम दो दोस्त थे, दोनों चोर थे, डाके डालते थे, एक बार बहुत माल हमने चोरी किया, बांटा तो मेरे को गधा ऐसे नहीं आया, सामान तो बांटा, चोर भी चोरी किया था तो घोड़े थे गधे थे, एक गधा मेरे को मिला, मैं गधे के ऊपर चढ़ के जा रहा था, गधा थक गया, गधा मर गया, मैंने क्या करूं, मैं खड्डा खोदा, गड्ढे को खड्डे में डाला, ऊपर मिट्टी डाली, ऊपर ताजा पानी था, मैं थक गया बैठा था, कपड़ा पेड़ पे रखा, मैं देखा गाय रास्ते में लोग जाते हुए, वो देखा ना कब्र पड़ी है, पानी पड़ा है, कपड़ा पड़ा है, उतर के नमस्कार किया, 2 रुपया रखा। अरे थोड़ी देर में थका हुआ था, देखा तो 3-4-5 और रुक गए, और 10 रुपया रखा। थोड़े दिनों के बाद देखते देखते वहां बहुत बड़ा एक मिजार बन गया, जैसे एक मंदिर बने ऐसे बन गया, लाइन लोगों की लगी हुई है, ऑफिसर लोग आके प्रणाम कर रहे हैं, और ये बड़ा महात्मा हो गया। इसके दोस्त को मालूम हो, तो अभी चोरी कर रहा था, उसने कहा अगर कोई यहां ऐसा बड़ा फकीर है, कोई साधु है, तो मैं भी जाके उससे आशीर्वाद ले लूं, ताकि कम से कम चोरी में ही कामयाब हो जाऊं। उधर जो गया तो बोला महाराज कृपा करना ऊपर, महाराज की दरअसल का बोला ये तो मेरे साथी चोर है, ये कहां से महाराज है? वो भी इसको पहचान गया, उसने बोला तुमसे बात नहीं की जाएगी, अंदर बैठ जाओ। सब लोगों ने उसको पकड़ के अंदर बिठा दिया, सब लोग जब चले गए, उसको उसने बोला तुम्हारे को किसकी गधी मिली है, कौन महात्मा था? बोला गधी नहीं है, गधा है। बोला गधी नहीं है, गधी तो होती है किसी महात्मा का, चला जाता है उसके पीछे गधी के ऊपर। बोला गधी नहीं, गधा है, जो किया था उन्होंने दिया था पार्टनरशिप वाला, मर गया है। अब पहले तो चोरी करते थे, पुलिस से डरते थे, अब पुलिस वाले यही पैसा रख के जाते हैं, यह सबसे अच्छा धंधा। तो इसको परंपराएं बोलते हैं, परंपराएं ऐसी चलती हैं। यहां भी ओझा के बहुत जो ओझा के पुजारी हैं, ओझा क्या करेगा, ऐसी परंपराएं चलाता है, पैसे जेब से पैसा निकालना आता है उनको, मूर्ख बनाना आता है, और कुछ भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है जिस चीजों की। ये कृष्ण सिखा रहे हैं कि बाबा ये परंपरा है, इंद्र बरसात करता है, क्यों करता है? इसलिए करता है, हमारा कर्म है तब करता है, कर्म करेंगे तो मिलेगा, फल नहीं तो कैसे मिलेगा? कोई जरूरत नहीं है इंद्र की पूजा करने की। अरे हम तो वैश्य हैं, हमारा तो खेत है, हमारी तो गाय है, हमको पूजा करनी चाहिए ब्राह्मण की, और ये गिरिराज की, जिसके ऊपर हमारी गाय घास खाती है, ये गिरिराज तो गाय को बहुत सुंदर सुगंधित घास देता है, और जल के बहुत सुंदर झरने यहां से बहते हैं, पानी पीने को ये गिरिराज देता है, पूजा तो इसकी करनी चाहिए, ब्राह्मणों की करनी चाहिए। क्या रखा है इंद्र में, कभी आया इंद्र खाने के लिए? नंद बाबा बोला ऐसे करो बेटा, आपके इंद्र की भी हम इंद्र की पूजा करके फिर आपके गोवर्धन की और ब्रह्म। बोला इतनी द टाइम नहीं, अभी यही सामग्री, इंद्र की पूजा बंद, गोवर्धन की पूजा शुरू। छोटे 7 साल के बाल की बात बाल बच्चे की मान ली सब नंद बाबा आदि ने, और बहुत बड़ा उत्सव दिवाली के दूसरे दिन मनाया। इतना प्रसाद बनाया कि उस उत्सव का नाम हो गया अन्नकूट। कूट कहते हैं पहाड़ को, अन्न के पहाड़ बनाए, चावल का पहाड़ है, हलवे का पहाड़ है, मिठाई जलेबी का पहाड़ है, ऐसे इतना प्रसाद के 2-3 किलोमीटर में प्रसाद ही प्रसाद के पहाड़ बने हुए। गोवर्धन की पूजा करने लगे और इतनी देर में गोवर्धन के ऊपर बहुत बड़ा स्वयं एक कृष्ण, छोटा सा 7 साल का बच्चा यहाँ खड़ा है, एक कृष्ण सामने उस गोवर्धन के ऊपर बहुत बड़ा विशाल रूप धारण करके हजारों हाथों से जो प्रसाद ऐसे लेके अप। कुछ लोगों ने प्रसाद नंदगांव में आ नहीं पाए, दूर से वहां रखा था, एक हाथ लंबा करके सब देख रहे हैं ऐसे प्रसाद अंदर डाल। ये तो ऐसे रामायण में लिखा है कि जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आया ना, तो राम जी पूछते हैं विभीषण, ये पहाड़ चलता हुआ कौन आ रहा है? तो पूरा पर्वत लग रहा है, तो बड़ा पूरा पर्वत है, ये कौन चलता हुआ है और कर क्या रहा है? ऐसे करके 10-12 बांदर को लेके ऐसे मुंह में डालता है, इधर 15-20 बांदर, जैसे 25-30 बांदर जैसे चने नहीं खाता है ऐसे खा रहा है, और उसके शरीर के ऊपर 50-60 बांदर नहीं 500 बांदर 500 चढ़े हुए ऐसे कर रहे हैं, और उनको पकड़ता जा रहा है ऐसे डाल रहा है मुंह में। अरे पूछा राम जी ने आकर विभीषण ने, बोला कौन है ये है पूरा पहाड़ चल रहा है? बोला ये विभीषण कह रहे हैं ये हमारा भाई रावण से छोटा और मुझसे बड़ा है, इसका नाम कुंभकर्ण है। ओ ये कुंभकर्ण आ रहे हैं, भगवान तो पहचान लिया कि रावण और कुंभकर्ण वही जय और विजय हैं, अभी इनका उद्धार तो करना ही है, तो भगवान ने तो पहचान लिया। लेकिन पूछा तो इतना बड़ा पहाड़, आज गोवर्धन इतने बड़े बने हैं और सब प्रसाद खा गया, और फिर बोला आनी और लाओ। कुछ वीरेन जैसे ऐसे व्यास जैसे कुछ गोपाल खड़े थे ना, बोले कृष्ण ये सब खा गया हमारा मोजे है, सब फिनी मोजे फिनी, गोवर्धन सब खा गया, और बोलता और लाओ, और जो घर में था वो सारा पका के लाया, तो कुछ भी नहीं है पीछे। इतनी देर में एकदम गोवर्धन बोलता अपे सारा प्रसाद बाहर रखा, महाप्रसाद सारी वापस प्रसाद पूरा महाप्रसाद बन के आया, और कृष्ण कहते अब ये ब्राह्मणों को पहले बांटो महाप्रसाद, फिर आप लोग खाओ, फिर गरीब से गरीब को दो, कुत्ते को दो, कुत्ते खाने वाले को दो, लेकिन इंद्र को एक दाना मत देना, इंद्र का बंद। देखो इससे पहले भगवान, इस अध्याय से पहले भगवान ने यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को तिरस्कृत करके उसकी पत्नियों को भक्ति दे दी, यज्ञ को गौण कर दिया, यज्ञ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, भगवान की सेवाएं। आज इंद्र की पूजा बंद करा के देवता की भगवान गिरिराज की पूजा कर रहे, अपनी पूरी की पूजा करा रहे। अब ये प्रसाद बट रहा है बड़े प्रेम से, बड़े खुश होके ग्वाल बाल सब अपने घर गए। सारे बड़े बड़े गोपा के नंद बाबा को कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ उत्सव तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो साक्षात भगवान, पहले हम चढ़ाते थे कोई खाता नहीं था, तो भगवान सारा खा भी गया और फिर वापस भी दे दिया, हमने देखा बोल भी रहा था ऊपर से और लाओ। वो गांव का नाम है आनी, और अभी भी गोवर्धन परिक्रमा में जहां भोग लगा था भगवान को उसके पास एक गांव है, उसका नाम है आनी, और उसका मतलब और लाओ, आनी और लाओ। वहां भगवान को भोग लगाया गया था गोवर्धन को। गोप तो घर में गए, लेकिन गोपाल चंपो में लिखा है नीचे इतना कीर्तन का आनंद हो रहा था और सब लोग प्रसाद अर्पण करने के बाद गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, गाय आगे आगे थी, फिर नौजवान थे पीछे बैलगाड़ियों में, रोहिणी नंद यशोदा और कृष्ण ये बच्चे लोग परिक्रमा बैलगाड़ी में कर रहे थे। कीर्तन का इतना आनंद था कि स्वर्ग में बैठे हुए इंद्र के कानों में बहुत दर्द हुआ, अश्वनी कुमारों को बुलाया कि मेरे कानों में दर्द क्या, जरा देखो तो क्या हो गया। उन्होंने बोला ये नीचे से जो कीर्तन का शोर आया है इसकी वजह से तुम्हारे कान खराब हुए। हाँ क्या हुआ, अभी तक मेरा प्रसाद नहीं पहुंचा, ये ब्रजवासी मुझे अर्पण करते हैं। बोला आपका अर्पण वो गोवर्धन को दे दिया, आपके लिए कुछ नहीं रखा है। इंद्र ने बोला एक तो मेरा प्रसाद बंद और दूसरा इतना शोर के मेरे कान में भी दर्द, अब क्या करना चाहिए? मैं देखता हूं इनको दिमाग खराब हो गया, एक छोटे बच्चे के कहने के ऊपर मेरा भोजन बंद करा दिया, मेरी पूजा बंद करा दी। वो बादलों को बुलाया, समन तक बादल, हाँ कौन से बादल, जो प्रलय के समय पानी जब बरसाते हैं तो कहां धरती है कहां पहाड़ है पता नहीं लगता है, उन बादलों को बुलाया, इधर आओ जाओ ब्रज में, ब्रज को डुबा दो, गैया सब डूबनी चाहिए, ब्रजवासी सब मरने चाहिए, जाओ। वो समन तक बादल ऊपर से पानी भर के आए, बड़ा इतनी बरसात होने लगी, थोड़ी देर जैसे बरसात के ऊपर से कालम की कालम नीचे गिर रहे हो, ब्रजवासियों को पता नहीं लगा घर कहां है, पानी कहां है, चारों ओर से ऐसे हो गया, गैया पड़ी दुखी हो रही है, बैल दुखी हो रहे हैं, गई अपने बच्चों को छुपा रही है नीचे, सब लोग कहते हैं कृष्ण 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 रक्षा करो, माए पाई माम कृष्ण हमारी रक्षा करो, आपके कहने से हमने इंद्र का यज्ञ बंद किया, अब ये इंद्र मुसीबत पैदा किया, अब क्या करें। कृष्ण का डरो मत डरो मत, गोवर्धन की पूजा करिए, गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। और कन्हैया ने ऐसे जैसे छोटा बच्चा छाता उठाता है ऐसे उठा के गोवर्धन को उल्टे हाथ के ऐसे उंगली के ऊपर खड़ा किया और कहा आइए आइए आप लोग सब आइए आइए, ये गोवर्धन सुंदर छाता है आपके लिए, इसके नीचे आपकी रक्षा होगी। सब ग्वाल बाल उसके नीचे आके खड़े हो गए और कन्हैया खड़ा है, बरसात तो हो रही है, गोवर्धन बहुत चारों ओर से ऐसे अंदर पानी नहीं आ रहा है, ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र ऐसा तेज घूम रहा है कि पानी नीचे गिर ही नहीं रहा है। 7 दिन बरसात चलती रही, 7 दिन सारे गोप बोलते हैं, पहले रात को कन्हैया घर जाता था, हमको देखने को नहीं मिलता है, अब हमारे सामने खड़ा है, गोपियां बोलती है इसको देखने के लिए कितनी तरसती थी, अब 7 दिन 7 रात एक ही जगह सब देख रहे हैं। लेकिन यशोदा माँ कहती है मेरा बच्चा छोटा सा 7 वर्ष का इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठाएगा, हे भगवान मैंने आपकी कोई पूजा की हो तो ये पर्वत रुई जैसा हल्का हो जाए, मेरे बच्चे के हाथ के ऊपर दर्द नहीं होना चाहिए। ओ मधुमंगल जो ब्राह्मण है खड़ा हुआ कहता है मैया डरती क्यों, मैं ब्राह्मण हूं ना, मेरे मंत्र की शक्ति से ऊपर खड़ा है। यशोदा बोलते तुम्हें डर नहीं है, तुम इतनी कष्ट है कृष्ण को और तुम मजाक कर रहे। कृष्ण बोले मैया ये ठीक कह रहा है, ये तो बिल्कुल कोई दर्द मेरे को नहीं हो रहा है। और तब किसी ने गोपियों को कहा कि राधा रानी की ओर कृष्ण की नजर थी, राधा रानी तुम यहां से अपनी नजर हिलाना मत, और तुमने नजर हिलाई कृष्ण तुम्हारी तरफ देखा तो ये पार सबके ऊपर गिरेगा। इतनी देर में कृष्ण ने बांसुरी निकाली, सीधे हाथ से बांसुरी बजाना शुरू किया, बांसुरी बजाई, सबने कहा बंद करो बांसुरी, तुम्हारी बांसुरी बजा गई ये पत्थर पे गल जाएगा और सारा नीचे गिरा तो हम दब जाएंगे, तुम्हारी बांसुरी अब बंद करो बजाना। कृष्ण बांसुरी क्यों बजा रहे हैं, बोला मुझे कोई इसकी तकलीफ नहीं लग रही है, तो बहुत हल्का सा है ऊपर अपने आप उड़ रहा है, मैं तो उंगली। तब बड़े बड़े ग्वाल बाल खड़े थे, उन्होंने अपना डंडा लगाया, डंडा लगाया बोला कहीं कृष्ण का हाथ थक न जाए, किसी ने कहा तुम्हारा थोड़ा मालिश कर लेते हैं नहीं तो तुम थोड़ा हाथ नीचे करके दूसरा लगा दो। सभी ऐसे लगे हुए हैं तो गोपियां कहती है इसकी डर मत हो, इसको कोई कुछ नहीं होने वाला। बोला क्यों, बोला हमारे घर का माखन खाया है, बहुत शक्ति है ये माखन की शक्ति से ये ऊपर खड़ा है, माखन बहुत खाया है इसने हमारा। 7 दिन बड़े आनंद के साथ कृष्ण के साथ ये भक्तों का प्रेम उल्लास रहा। और तब सूरज निकला, बरसात बंद हुई, भगवान ने कहा बाप अपने अपने घर जाओ आनंद से, कोई जाने को तैयार नहीं है, भगवान को देखने में इतना आनंद आ रहा है। भगवान ने जैसे था वैसे गोवर्धन को नीचे रख दिया, ब्रजवासी अपने घर गए। और ऊपर इंद्र कहता है क्या किया तुम, बादलों ने कुंद डुबाया नहीं, बोला वहां कुछ नहीं हो रहा है, वो पहाड़ हाथ के ऊपर खड़ा करके रखा है, नीचे सारे आनंद से वो तो गीत गा रहे, हमारा पसीना सूख गया। इंद्र को बहुत बड़ा दुख हुआ कि मैं एक बच्चे से हार गया। और कृष्ण ने 8 देवताओं की पूजा बंद की थी, 8 देवताओं को इस तरीके से एक एक करके सबको ये शिक्षा दी कि जरूरी नहीं है भगवान की भक्ति करने वालों को देवता की पूजा करना जरूरी नहीं है, गीता में ये शिक्षा देके गए हैं स्वयं कृष्ण। आज कृष्ण ये सिद्धांत करके इंद्र की पूजा बंद, मेरी पूजा करो खत्म करो। अब क्या तकलीफ जब होने लगी, अब इंद्र बड़ा दुखी हो गया, क्या करूं। ब्रह्मा जी को कहता है देखो मेरे से अपराध हो गया, मैं तो पहचान नहीं पाया, मैंने समझा 7 साल का बच्चा है, लेकिन वहां तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, हाँ अब क्या करना चाहिए। बोला मैं भी एक बार ऐसे कर चुका हूं, मैं उसके ग्वाल बाल चुराए थे, मेरे से बात तक नहीं की, चारों देखो मेरे सर ऐसे घुमा घुमा के प्रणाम किया, अकेले मत जाना, किसी भक्त को साथ ले जाओ, कोई भक्त जाएगा तो बात करेगा, तुमसे बात भी नहीं करेगा। बोला किसको ले जाऊं, बोला कृष्ण गोपाल है, गाय से बहुत प्रेम करता है, तू मां सुराभी के पास चला जा। अब इंद्र स्वर्ग का राजा है, गाय सुराभी के पांव में जाके प्रणाम करता है, मैया तुम मेरे साथ चलो। बोलो क्यों, बोलो गोपाल को राजी करना है। अब इंद्र अपना एरावत को लेकर सुराभी गैया को लेकर वहां से कृष्ण से मिलने आया, और कृष्ण यहां गैया चराने गया, कृष्ण गैया चराने गया, ग्वाल बालों को एक जगह छोड़ के एक जगह जाके बैठा। ग्वाल बाल अपने आनंद में, कृष्ण बैठा है तब ऊपर से मां सुराभी आई, प्रणाम किया के गोपाल आपने गायों की रक्षा की है, मैं गायों की मां हूं, मेरे बच्चों की आपने रक्षा की है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं आपका अभिषेक करना चाहती हूं। इंद्र भी अभी माफी मांगने के लिए आया है, अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है, उसको भी क्षमा कीजिए। सुराभी के कहने के ऊपर फिर इंद्र ने आके प्रणाम किया, और फिर एरावत गंगा का जल लेकर आया, सुरभि ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया, और फिर भगवान शंकर आए हैं, ऐसे अपने सांप बांप एक तरफ रखे गए, मानसी गंगा में स्नान किया, फिर वापस आके फटाफट भगवान का अभिषेक किया, और फिर दूसरे ब्रह्मा आदि देवता सब आए, तब कहा आज से हम आपका नाम गोविंद रखते हैं, भगवान का ये नाम गोविंद। उस दिन जब अभिषेक हुआ तो गोविंद नाम रखा, और अभिषेक का जहां जल गिरा था वो गोविंद कुंड बना। आज भी गोवर्धन परिक्रमा में वो स्थान गोविंद कुंड है जहां ये लीला हुई थी। ये लीला सब हो रही थी, और बहुत बहुत सुंदर देवता वहां से अपना सामान लाए पूजा के, सोने के, और वो देवता तो चले गए, सामान तो वहीं छोड़ के गए, देवताओं को कोई सामान उठाने की जरूरत नहीं है, वो तो जो दोबारा उनके पास बहुत पड़ा है। ये जो ग्वाल बाल गए, इतना सारा माल देखा, ये कहां से आए कन्हैया, ये कौन लाया, ये कैसे लाया, मतलब पता नहीं देवता आए होंगे कोई रख के गए, हमें मालूम नहीं। अब तो ग्वाल बाल देखते आए, अभी तक कृष्ण कन्हैया आया नहीं, नंद बाबा आज ये कन्हैया कहां गया, कन्हैया कहां गया, वो बोला उधर बैठा है, बोला इतना सारा सामान ये कहां से आया, कौन लाया। तब मधुमंगल कहता है मैंने देखा था कौन आया था, मैं देखा था। बोला कौन था, बोला एक गाय थी, एक बड़ा हाथी था, एक आदमी था, उसके सारे शरीर पे आंखें ही आंखें थी, 100 आंखें उसके शरीर पे, आईज है आईज ओनली, और उन्होंने कन्हैया को प्रणाम किया, उन्होंने कन्हैया का अभिषेक किया। तब आकाशवाणी हुई, देवताओं ने कहा कन्हैया का हमने अभिषेक किया है, और इसका नाम आज से गोविंद हो गया। तब से कन्हैया का नाम गोविंद हो गया, और सारे ग्वाल बाल जाके बड़ी उम्र के गए नंद बाबा को, बोला आपने बताया नहीं आपका बेटा 7 दिन तक इतने पहाड़ को कैसे उठा के रखा है, कौन है ये, आप हमको बताया नहीं, आप हमारे समाज में रहते हो पर हमको बताया नहीं आपका बेटा कौन है। नंद बाबा ने बैठिए बैठिए दूध पीजिए, और मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूं, मुझे ये मालूम है कि गर्ग जब मुनि आया था और जब नामकरण संस्कार किया था तब कहा था कि ये नारायण के समान है, ये आपकी रक्षा करेगा। अब ये 7 दिन का पूरा उत्सव चला, गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन सिंपली वंडरफुल कृष्ण की महिमा नंद बाबा ने सुनाई। यहाँ गोवर्धन पूजा की कथा समाप्त होती है, आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। श्री कृष्ण भगवान की
जय,
राधा दामोदर की
जय,
गोवर्धन धारी की
जय,
गिरधाराधा गिरधारी की
जय,
श्री प्रभुपाद की
जय,
गौर प्रेमानंदे, धन्यवाद, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। तो लेट हो गया था, इतना काफी, इट्स ओके, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट स्पीक एनीथिंग इन इंग्लिश टुडे,
इट्स ओके, आई अंडरस्टूड सम ऑफ द कथा।
किसी का कोई प्रश्न है?